Hare Krishna. तो आज जो है द्वादशी भी है और इसके साथ साथ हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के तीन प्रमुख आचार्यों का भी जो है तिरुभाव दिवस है। और ये तीनों आचार्य हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गौड़ीय संप्रदाय में, जिसमें एक है रघुनाथ दास गोस्वामी जी, दूसरे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी और तीसरे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो इन आचार्यों के विषय में हम लोग प्रयास करेंगे हमारे जो वैष्णवाचार्यों की समाधि पुस्तक से पढ़ने का और इनका गुणगान करेंगे, इनके जीवन की कुछ संक्षिप्त चीजों को चर्चा करेंगे। तीनों गोस्वामी में सबसे मुख्य बात यह थी कि जब ये नित्यालीला प्रविष्ट हुए तो ये सबके अंतर एक एक साल का अंतराल था और एक उसी दिन में उसी डेट में जो है इन्होंने नीलम प्रवेश किया और इनकी समाधियां जो है हम लोग राधा कुंड में भी देख सकते हैं। जब हम लोग परिक्रमा करते हैं तो वहां पर इनकी तीनों की समाधि पुष्प समाधि बनाई गई है। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के विषय में। पहला पेज उन्हीं का है। कृष्णदास गोस्वामी जी जो हैं बता रहे हैं यहां पर, कठुआ में प्रकटित कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से स्वप्न में यह आदेश प्राप्त कर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। आरे कृष्णदास ना करह भय, वृंदावन यहां तहां सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास भय ना करो, वृंदावन जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें सर्वस्व प्राप्त होगा। चैतन्य चेतावनी। कृष्णदास ने रघुनाथ दास गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने राधा रानी के मध्यान्ह स्नान घाट मानस पावन घाट के निकट श्याम कुंड पर एक वैरागी का जीवन व्यतीत किया। योग्यता प्राप्त भगवतगण को उपाधियां प्रदान करने की अपनी प्रार्थनासार श्री जीव गोस्वामी ने कृष्णदास गोस्वामी जी को उनकी रसात्मक अन्यतम रचना गोविंद लीलामृत के लिए कविराज की उपाधि से सम्मानित किया। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में लिखते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज भक्त समाज के सिरमौर हैं। उनकी कृति गोविंद लीलामृत पत्थर को भी द्रवीभूत कर देती है, किंतु हाय मेरा मन उनके प्रति आकर्षित नहीं है। तो एक भजन में जो है ये लाइन है, कुछ पंक्तियां हैं जिसमें कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने गोविंद लीलामृत और कृष्णदास गोस्वामी जी के द्वारा जो चैतन्य चरितामृत की रचना हुई है उसके विषय में लिखा है और बता रहे हैं। जैसे कि हमेशा नरोत्तम दास ठाकुर जी आचार्यों के प्रति या अब जैसे उनकी कृति के प्रति हमेशा एक अपने हृदय में ये भाव रखते थे कि हाय मैं इनका संग नहीं प्राप्त कर पाया, रामचंद्र जी का संग नहीं प्राप्त कर पाया, एक विरह उन्होंने अपने भजनों में दिया है। तो यहां पर भी उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्णदास के समय समग्र वैष्णव वृंद श्री हरिदास पंडित के श्रीमुख से श्री चैतन्य भागवत पाठ का श्रवण करने हेतु गोविंद जी मंदिर में एकत्र होते थे। भक्तगण भगवान गौरांग की उत्तरकालीन लीलाओं का श्रवण करने हेतु उत्सुक थे, अतएव उन्होंने कृष्णदास कविराज से उन्हें लिपिबद्ध करने का आग्रह किया। कृष्णदास ने मदन मोहन से प्रार्थना की कि वे उन्हें योग्यता व आशीष प्रदान करें। अर्च विग्रह का पुष्पहार नीचे गिर गया जो दिव्य स्वीकृति का सूचक था। तो ये था सब वैष्णवाचार्य जब चैतन्य भागवत से चैतन्य महाप्रभु की लीला का श्रवण करते थे तो उनके अंदर ही उत्कंठा हुई कि हम लोग चैतन्य महाप्रभु की और लीलाओं का भी श्रवण करें और पता करें। तो उन्होंने कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी से प्रार्थना करी कि वो ही उन सब चरित्रों को जो कि अलग अलग कड़छों में लिखा था जो डायरीज होती हैं अलग भक्तों के बाद जो उनके समकालीन भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिपिबद्ध कर लेते थे या जो घटनाएं उनके सामने घटित हुई थी, तो एक बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जो दैन्यता थी, जब उनको ये उपाधि मिली या जब उनको कहा गया कि आप ये लिखिए, तो उन्होंने इतने आसानी से स्वीकार नहीं कर लिया। जैसे आजकल तो कोई किसी को अगर गुरु दीक्षा मतलब इंस्ट्रक्शन दे चाहे ना दे, बट लोग तैयार रहते हैं पुस्तकें लिखने के लिए या करने के लिए, क्योंकि एक अलग सा भाव रहता है उसके पीछे। लेकिन यहां पर जब उनको सब वैष्णवों ने बोला, तो उसके बावजूद भी वो अपने को बड़ा नगण्य सा महसूस करते थे और कहते थे मैं तो इस योग्य नहीं। और इतना ही नहीं, उन्होंने दैन्यता की तो पराकाष्ठा दिखाई, तो ये भी बोलते थे कि मेरा तो नाम भी मत लीजिए, भक्तों को बोलते थे। और अपनी तुलना इतने ज्यादा मतलब कीट मकोड़ों से करते थे, और इस प्रकार की दैन्यता उनके अंदर थी। लेकिन जब सभी वैष्णवों ने बोला, तो उसके बावजूद भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी मदन मोहन जी से। तो यहां बता रहे कि मदन मोहन जी का जब हार गिरा, तो ये स्वीकृति थी कि ठीक है आप लिख लीजिए। तब उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने उसको लिखने का प्रयास किया, फिर शुरुआत की। यहां पर फिर बताया जाए कि कृष्णदास कविराज जो हैं, उनके द्वारा जो चैतन्य चरितामृत लिखा गया, वो सर्वाधिक सटीक प्रमाणिक एवं दार्शनिक चरित्र था। तीन ग्रंथ जो हमें प्राप्त होते हैं चैतन्य महाप्रभु से संबंधित, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल और कृष्णदास गोस्वामी जी के द्वारा लिखा गया चैतन्य चरितामृत, इसमें सबसे ज्यादा सटीक प्रमाणिक एवं दार्शनिक चरित्र इसमें मिलता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है, एक तो बहुत सुंदर ढंग से चैतन्य महाप्रभु के बचपन की आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में चैतन्य महाप्रभु के पूरे जीवन को जो है संकलित करता है। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का भी इसके अंदर समावेश है, और भक्तों के साथ जो डीलिंग्स हुई हैं, जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्तों के साथ व्यवहार किया है या भक्तों ने महाप्रभु के साथ जो व्यवहार किया है, उसमें जो वैष्णव एटिकेट, वैष्णव सदाचार का जो पालन हुआ है, तो हमारे जैसे भक्तों के लिए जो चैतन्य महाप्रभु का कथाओं का श्रवण करते हैं, तो और भक्ति को जो अपने जीवन में अपने उतार रहे हैं और साधना का पालन करते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु का जीवन, उनके भक्तों के, उनके परिकरों के साथ उनकी डीलिंग भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी सारी चीजें प्रभुपाद जी ने या अन्य गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत से ही कोट की है, कारण कि उसके अंदर वो सारी की सारी दर्शन है जो कि भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों में भी दिया गया, और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में वो सारी चीजें मिलती हैं। इसके अलावा जो है, उनकी प्रत्येक पंक्ति असीम विनम्रता, उत्साह एवं श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु के प्रति अटूट भक्ति से भरपूर है। तो हम देखते हैं जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले वो हर जगह प्रार्थनाएं करते हैं, और उन प्रार्थनाओं में तो एक प्रार्थना में तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मतलब उनका फेथ इतना है गौरांग महाप्रभु पे कि वो कहते हैं कि अगर कोई गौरांग महाप्रभु का स्मरण करता है, उनके नाम का स्मरण करता है या उनका दर्शन करता है, तो बताया गया है, कहते हैं कि येन केन प्रकारेण, अगर किसी भी तरह उनका करता है स्मरण, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति के जो दुष्कर्म सुकर्म भवे, अर्थात ऐसे जो काम हैं जो बहुत मुश्किल से होने वाले हैं, जिसमें बहुत विपदा आ रही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सुकर्म, अर्थात सरल बन जाते हैं। और कह रहे हैं कि अगर कौन किसके, जो श्री चैतन्य नमामिता, जो चैतन्य महाप्रभु का नमन करता है, प्रणाम करता है, उनका दर्शन करता है, उनका स्मरण करता है। लेकिन कह रहे हैं निश्चितम विपरीतम स्वाद, हाँ एक चीज और भी निश्चित है, क्या कि यही चीज उल्टी हो जाएगी। क्या चीज, कि अगर किसी का बहुत सरल काम है जो लगता है बस अब हुआ ही हुआ, अब होना ही होना है, और अहंकार वश वो भगवान का स्मरण नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु का स्मरण नहीं करता, तो सरल काम भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उसमें विपरीत है। कारण कि कर्ता का भाव जो है व्यक्ति के अंदर सबसे पहले आता है, और जो भक्त लोग हैं वो लोग सदैव हर क्रिया में भगवान का हाथ देखते हैं। तो चैतन्य कविराज जी जो हैं महाप्रभु के लिए श्लोक उद्धृत करते हैं और बोलते हैं कि जो व्यक्ति उनका स्मरण करता है उसके मुश्किल से मुश्किल काम भी सरल हो जाते हैं, उनको प्रणाम करने वाले होते हैं। तो भक्तों को भी चाहिए कि सदैव महाप्रभु का स्मरण करे, उनका जीवन, उनका जो रूप है उसका दर्शन करे और भगवान से प्रार्थना करे। और उसके अलावा जो है कविराज जी हर अध्याय शुरू होने से पहले पंचतत्व को प्रणाम करते हैं, है ना, और उनकी कृपा की याचना करते हैं और उसके बाद जो है आगे कथा शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं। कृष्णदास में किसी को आहत किए बिना संभाषण करने की अद्भुत शक्ति थी। किसी को आहत किए बिना मतलब कि जब भाषण करते थे या बातचीत करते थे किसी से, तो उस बातचीत में ऐसा नहीं होता था कि सामने वाला व्यक्ति आहत हो जाए, ऑफेंडेड फील करे। यह भी एक बहुत बड़ी कला है, लेकिन कलयुग में अगर इस कला का हमारे प्रचारक, स्टार प्रचारक और ये सब पालन करने लगेंगे तो मायावाद का या जो दूसरे तरह के लोग हैं इनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा, ठीक है ना। जब तक यहां पर बोला नहीं जाता तब तक तो समझाया नहीं जा सकता लोगों को कि जैसे आजकल हर तरह के लोग नाना प्रकार के जो हैं लोग टीवी पे आते हैं और अलग अलग प्रकार का संभाषण करते हैं। तो बस बता रहे हैं कि उस समय भी जो वैष्णव आचार्य थे या उस समकालीन जो थे तो उनको कभी वो नहीं कर ऑफेंड नहीं करते थे, और कह रहे हैं कि भले ही वे अपने विरोधियों की भर्त्सना क्यों ना कर रहे हों, उन्हें समस्त वैदिक वामंडे का व्यापक ज्ञान था। उनके ग्रंथ, श्रुतियां, स्मृतियां, न्याय, ज्योतिष शास्त्र एवं पाक कला में उनका कौशल दर्शाते थे। यद्यपि कृष्णदास एक सुशिक्षित विद्वान, एक कठोर वैरागी तथा एक परमहंस रसिक वैष्णव थे, वे अपने विषय में लिखते थे कि मैं मूक, बधिर, नितांत निरक्षर, भौतिकतावादी तथा मल्ल कृमि से भी शूद्र हूं। ये शब्द वो अपने लिए प्रयोग करते थे। जब उन्होंने बात कही कि दैन्यता कही, तो वो अपने आप को इन शब्दों से जो है संबोधित करते थे कि मैं मूक हूं, बधिर हूं, ना मेरी मुंद्र वाणी है, ना मैं सुन सकता हूं, मैं नितांत निरक्षर, मैं अनपढ़ व्यक्ति हूं, और भौतिकतावादी तथा मल कृमि, अर्थात मल के अंदर जो कीड़ा होता है, और उस तरह का शूद्र व्यक्ति हूं। ये कृष्णदास जी अपने विषय में दीनता के कारण, दैन्यता के कारण, उनकी व्यक्तिगत विनयशीलता स्वतः ही चैतन्य चरितामृत के पाठक के हृदय को आकृष्ट कर लेती है। तो जब व्यक्ति चैतन्य चरितामृत पढ़ना शुरू करता है तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज के जब इस प्रकार के वचनों को पढ़ता है तो उनकी जो दैन्यतापूर्ण ये शब्द हैं वो किसी भी पाठक के हृदय को क्या कर देता है, विदीर्ण कर देता है। उनकी दैन्यता को देखकर पाठकों के अंदर भी क्या आ जाती है, दैन्यता आ जाती है। तो कई बार बताते हैं जो क्वालिटी किसी भक्त के अंदर है तो वो प्रचार जब करता है तो उस प्रकार की क्वालिटीज बहुत जल्दी उन भक्तों के अंदर भी आ जाती है जो उसका श्रवण इत्यादि कर रहे हैं। तो ये जो है इनके द्वारा रचित ग्रंथ भक्तों को पढ़ना चाहिए। कृष्णदास कविराज तृण से भी विनम्र, वृक्ष से भी सहिष्णु का एक सजीव उदाहरण थे। ये हम शब्द सुनते हैं खाली, लेकिन इनके जीवन चरित्र से दिखता भी है। चैतन्य चरितामृत का पठन कर भक्त आध्यात्मिक उन्नति करेगा तथा राधा कृष्ण प्रेमा भक्ति पर श्री चैतन्य की शिक्षाओं को समझ पाएगा। चैतन्य महाप्रभु के एक नित्य मुक्त पार्षद श्री कृष्णदास कविराज का संग कर जीव में विनम्रता, निष्कपता, निष्ठा, समचितता, सौम्यता, शुचिता, स्वार्थहीनता, धैर्य, करुणा, गंभीरता, भौतिक इच्छा से मुक्ति, मृदुल स्वभाव और 6 मनोवेगों पर नियंत्रण, मैत्री भाव, समस्त प्राणियों के प्रति उदार भाव, आदर भाव, मौन धारण, दक्षता, काव्यकारिता एवं श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति जैसे वैष्णव गुण का विकास होगा। यह ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति उनका संग करता है उनके ग्रंथ के द्वारा। ब्रजलीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक कस्तूरी मंजरी है। उनकी समाधि राधा कुंड में तथा कई आचार्यों के मतानुसार राधा दामोदर मंदिर में भी है। तो अगर आप राधा दामोदर मंदिर जाएंगे तो जैसे ही हम परिक्रमा शुरू करते हैं तो दाहिनी ओर जहां जीव गोस्वामी जी की समाधि है उसके साथ में ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की समाधि है। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी त्रिभाव तिथि महामहोत्सव की इसके बाद जो है हम लोग दूसरे आचार्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जीवन चरित्र में थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। वैष्णव कुल में उत्पन्न रघुनाथ दास गोस्वामी के गोस्वामी एक धन संपन्न जमींदार के एकमात्र पुत्र थे। दो लोग थे, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। और जो गोवर्धन मजुमदार थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं उनके पुत्र थे। दो भाई थे, इनके यहां संतान और कोई नहीं थी ना लड़की, लेकिन हिरण्य जी के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ लेकिन गोवर्धन मजुमदार जी के यहां पुत्र हुआ। तो इसलिए उनको दो पिताओं का प्यार मिलता था और दो मतों का मान। और जितने भी लोग थे ऊपर से धनी कुल में थे, जमींदार कुल में पैदा हुए थे सप्तग्राम इत्यादि में, तो लाड प्यार शुरू से ही था। बाल्यावस्था में उन्हें हरिदास ठाकुर का संग एवं आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य 15 वर्ष की अवस्था में चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा कुछ वर्षों के उपरांत नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन्होंने एक सुंदर पत्नी तथा एवं वैभवशाली परिवार का त्याग कर दिया। तो यहां पर बड़े संक्षिप्त में लिखा है, नहीं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जीवन चरित्र में थर जी बताते हैं कि जब बहुत छोटे ही थे और तपन मिश्र के यहां पर भी जो है तो वहां पर गए, यहां की बात करें तो इनके परिवार में बचपन से ही जो है रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो है भगवान की ओर बहुत ज्यादा आकृष्ट थे। गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन सुनने लगे थे और उनका हृदय जो था वो चाहता था कि मैं महाप्रभु के साथ ही रहूं, उन्हीं के बीच में रहूं, उनकी सेवाओं में सहयोग करूं। और इसलिए उनके माता पिता जो थे वो हमेशा उनको सिक्योरिटीज के बीच में रखते थे ताकि ये कहीं भाग ना जाए और महापुरुष से ना मिल जाए। तो इस प्रकार क्योंकि तो बचपन में ही हरिदास ठाकुर जी का संग किया था तो प्रभाव तो पड़ता ही, तो बचपन से ही बहुत अच्छे भक्त थे। 15 वर्ष की अवस्था में अच्छा इनका फिर विवाह भी किया गया क्योंकि इनके लिए पहले खाने पीने के लिए, क्योंकि राजा टाइप रहते थे तो हर प्रकार का प्रलोभन दिया गया ताकि ये जो है इनका ध्यान जो है भक्ति से कम होकर इन भोग विलासिताओं की चीजों में लगे, क्योंकि एकमात्र इकलौता संतान थी और इकलौती संतान को सब कुछ देना चाहते थे और चाहते थे कि हमारे साथ ही रहे। लेकिन उनका भक्ति की ओर आकर्षण देखकर, गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की ओर आकर्षण देखकर माता पिताओं को सदा डर लगता था। तो नाना प्रकार के यत्न करते थे, सिक्योरिटीज रखते थे, उनके आसपास सारे पहरेदार होते थे ताकि ये लोग जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी भाग न जाएं। इसलिए जो है उनको बांधने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए गए। एक बार तो उनके पिता ने उनको बांधा भी कि भाग न जाएं, लेकिन फिर देखा कि इस तरह के बांधने से तो कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या करा, इससे बड़ा बंधन दिया। इससे बड़ा बंधन क्या था, उनको लगा कि इसका विवाह करा देते हैं। एक सुशील सुंदर स्त्री से इनका विवाह किया गया कि अब जो है ये इस आकर्षण से बच नहीं पाएगा और घर पे ही रहेगा। तो इस प्रकार जो है उनका विवाह करा दिया गया 15 साल में ही। और इसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। यहां पर संक्षिप्त में बता रहे, तो वे गौर राय एवं अपने शिक्षा गुरु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतरंग सेवा करने के निमित्त जगन्नाथपुरी भाग गए और 16 वर्षों तक वहां उनकी सेवा की। गौरांग महाप्रभु ने अपनी निजी गोवर्धन शिला एवं गुंजमाला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को प्रदान की। तो जो निजी शिला जो गौरांग महाप्रभु के पास थी, इसका हम दर्शन कहां करते हैं, कौन से मंदिर में, जो शिला थी जिसको महाप्रभु स्वयं पूजित करते थे वो शिला कहां पर है, राधा गोकुलानंद मंदिर में। तो उसमें उनका अंगूठे का भी साइन है। अगर आप कभी उस मंदिर में जाएं तो गौरांग महाप्रभु के द्वारा पूजित वो शिला जो कि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दी थी, उसका हम दर्शन वहां कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जगत से प्रयाण के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए जीवित रहना दुष्कर हो गया, अतएव वे गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपना जीवन समाप्त करना के बारे में विचार करने लगे और वृंदावन चले आए ताकि मैं वहां से ऐसा कर सकूं। श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी जी ने स्नेहपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन्होंने रघुनाथ दास जी को समझाया कि वे जीवित रहकर ब्रजवासी वैष्णव को है ना श्रीमन महाप्रभु की पूरी लीलाओं से प्रबद्ध करें। वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधाकुंड के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में संभाषण करने लगे। 3 घंटे की क्लास रोज लेते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने 40 वर्षों तक राधाकुंड के तट पर राधा कृष्ण का भजन किया। उन्होंने शुद्ध भक्ति भाव से परिपूर्ण एक कठोर तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने प्रदर्शित किया कि राधाकुंड की नित्य निकुंज लीलाओं में राधा गिरिधारी की नित्य प्रेम सेवा प्राप्त करने हेतु किस कोटि के वैष्णव की आवश्यकता है। उनका आदर्श उदाहरण समस्त गौड़ीय वैष्णव गण को राधा कृष्ण के प्रति अनन्य शुद्ध प्रेम विकसित करने के लिए उत्साहित करता है। तो स्वयं अपने उन्होंने जीवन से ये दिखाया कि राधाकुंड में भजन करने का मतलब क्या है, किस प्रकार 40 साल लगातार उन्होंने एक जगह बैठकर आप देखा उन लोगों का भजन कुछ देखा सब उन्होंने एकदम राधाकुंड के ललिता जी का जो वहां पर जाह्नवी जी का जहां स्नान करते थे उसके एकदम साथ में। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के दैनिक भजन में ये नित्य कृत्य सम्मिलित थे जो रोज करते थे। वो क्या करते थे, कम से कम 64 माला रोज, 1 लाख पवित्र नामों का जप, अपने सिद्ध देह में मानसी सेवा करना और गोवर्धन शिला की पूजा अर्चना करना, राधाकुंड में 3 बार स्नान करना, श्री कृष्ण को 1000 बार दंडवत प्रणाम करना, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत प्रणाम करना तथा उनका आलिंगन करना, 90 मिनट विश्राम करना और कभी कभी तो तनिक भी विश्राम नहीं करते थे। किंतु ध्यान रहे कि जब प्रभु का कोई नित्य पार्षद बाह्य रूप से विश्राम करता है तब भी वह मानसिक रूप से सेवा में संलग्न रहता है। वे प्रतिदिन केवल 1 दोना अर्थात लगभग 100 ग्राम छाछी ग्रहण करते थे, और ये भी सुनने में आता है कि वो भी बाद में 3 दिन में 1 बार कर दिया था। आप लोग वहां जाएंगे तो छाछ का प्रसाद मिलता है वहां। जीवन पर्यंत उन्होंने इंद्र तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। जीवन निर्वाह हेतु वे नाम मात्र को ही भोजन ग्रहण करते थे। जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के तिरुधान के उपरांत रघुनाथ दास केवल फल व दूध ही ग्रहण करते थे। श्री सनातन गोस्वामी पाद के प्रयाण पर कर जाने के पश्चात वे 1 या 2 दिन में 1 बार ही 1 दोना छाछ ग्रहण करते थे केवल जीवित रहने के लिए। और जब रूप गोस्वामी नित्य लीला में प्रविष्ट हुए तब तो रघुनाथ दास जी ने सब अन्न जल त्याग दिया। वे भगवान एवं उनके प्रेमिका प्रेमिक सेवकों की विरह ज्वाला में शने शने धीरे धीरे दहक रहे थे। ब्रजवासी उनकी जर्जर दशा देखकर रो पड़ते थे। तो जब हम लोग वैराग्य की बात करते हैं और तपस्या की बात करते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा आचरण हमें कहीं मतलब बहुत कम देखने मिलता है, इतनी सारी क्वालिटीज। और इनका जो प्रेम था महाप्रभु के प्रति बचपन से ही इतना, उन्होंने जिस तरह के परिवार से ये थे तो कई बार उनकी इनकम की भी चर्चा होती है तो पता चलता है कि आजकल भी कोई व्यक्ति इतनी इनकम नहीं करता होगा जितनी उस समय उनकी इनकम हुआ करती थी। और इतने धन धान्य वाले परिवार में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति भगवान से आकर्षित हो और शुरू से ही इस इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में और भौतिकतावादी भोग विलास वाले ऐश्वर्यमय जीवन से सदैव विरक्त रहते थे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने 3 ग्रंथों की रचना की, तत्वावली जिसमें मन शिक्षा, विलाप और कुसुमांजलि एवं अन्य अनेक पुस्तकें भी सम्मिलित हैं, मुक्ता चरित्र तथा दान के लिए चिंतामणि 2 किताबें और हैं। श्री ठाकुर भक्ति विनोद जी ने जैव धर्म में लिखा है कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वयं को श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का गूढ़ मार्ग दर्शाया है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखा व सिखाया कि वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा आध्यात्मिक सिद्धि की पराकाष्ठा है। इस कारण वे प्रयोजन आचार्य के नाम से विख्यात थे, अर्थात वे आचार्य जो राधा कृष्ण के प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी की परम श्रेष्ठता स्पष्टता स्थापित की। अंतरंग प्रार्थनाओं का एक संग्रह है, विलाप पुष्पांजलि में वे कहते हैं कि श्री राधा जी की सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है, अपनी प्राणेश्वरी राधा रानी के वियोग में निराशा व अत्यंत आतुरता का अनुभव करते हुए वे उद्विग्न होकर राधा रानी की सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना है? मेरा जीवन व्यर्थ है यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त ना हुई तो, मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरे लिए राधा कुंड एवं वृंदावन वास निरर्थक है। वृंदावन क्या, आपके बिना तो स्वयं श्री कृष्ण भी मेरे लिए अर्थहीन है। हे श्रीमती राधा रानी, आप ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, कृपया मेरे प्रति करुणाशील हो। प्रचुर दुखानल में दग्धित होकर अतिशय रोदन के साथ मैं आपके पाद पद्म अपने हृदय में धारण करता हूं तथा आपकी प्रेमा भक्ति की भिक्षा मांगता हूं। कदाचित यह विलाप पुष्पांजलि आपको स्वल्प मात्र तुष्टि पहुंचाए। तो ये उस ग्रंथ में से एक छोटी सी प्रार्थना है रघुनाथ दास गोस्वामी जी के राधा रानी के चरणों में। श्री वृंदावन धाम में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी रति मंजरी के रूप में श्री राधा रानी जी की सेवा में संलग्न है। उनकी समाधियां राधा कुंड में एवं 64 समाधि पीठ में भी है। तो यहां पर इसका इतना ही चर्चा के लिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महात्मोत्सव की। इसके अलावा जो है एक आचार्य हमारे और हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनकी सेवा थी हरे कृष्ण का सतत कीर्तन तथा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना। जगन्नाथपुरी में रघुनाथ दास जी ने अपनी अत्युत्कृष्ट पाक कला का तथा कीर्तन प्रदर्शन द्वारा गौरांग महाप्रभु को संतुष्ट किया, जिससे उन्हें कीर्तनाचार्य की भी उपाधि प्राप्त हुई। जब उन्होंने वृंदावन आगमन किया तब वैष्णव वृंद श्री रूप एवं सनातन जी ने नियमित रूप से उनके श्रीमुख से भागवत श्लोकों का श्रवण करते, जिन्हें वे कोकिल की कूच सम सुरीली वाणी में चार धुनों में गाते थे। उनका स्वर पाठ अद्वितीय था, व्यासदेव भी उसका आस्वादन करते थे। उन्होंने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की महिमा एवं अतुल्य महत्ता का प्रचार कर चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। राधा गोविंद जी के प्रति शुद्ध प्रेम से ओतप्रोत उनका नयन नीर पृष्ठों को आदर कर देता था। रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी कृष्ण कथा में इतने अंतर्लीन रहते थे कि उन्होंने कभी भी सांसारिक विषयों के विषय में ना तो बोला और ना ही सुना। भक्तगण की निंदा करना तो दूर की बात है, उनका विश्वास था कि समस्त वैष्णव अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, अतएव व्यक्ति को उनके दोषों को अनवेक्षित कर देना चाहिए। तो एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है ऐसे भक्तों के लिए, प्रोग्रेसिव डिवोटीज के लिए, जो रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी जी दूसरे वैष्णवों के विषय में सोचते थे। ज्यादातर वैष्णवों के जीवन में जो भक्ति करते हैं साधक लोग, उनके लिए सबसे मुश्किल चीज जो है, जिस चीज से बचना होता है उनको, वो ये है कि वैष्णव अपराध से बचना होता है। और ये वैष्णव अपराध व्यक्ति कब करता है, जब वो वैष्णवों के बीच में रहकर अलग अलग वैष्णवों की क्रियाओं को देखता है। किसी ने ऐसा कर दिया, किसी ने ऐसा कह दिया, उसने इस परिस्थिति में ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा, और उस बात की चर्चा करना दूसरे जगह से। तो धीरे धीरे व्यक्ति वैष्णवों की निंदा शुरू कर देता है। लेकिन एक इतने सुंदर स्टेटमेंट के साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने समझाया, क्योंकि सभी वैष्णव भगवान क्योंकि विविधताओं से भरपूर हैं, भावों से भरपूर हैं, क्योंकि भगवान को किसी पर्टिकुलर एक भाव से ही नहीं रिझाया जा सकता, असंख्य जीवात्माओं का भगवान से अलग संबंध है, तो इसलिए वैष्णवों का भी भगवान से एक अलग प्रकार का क्या है संबंध हो सकता है, और उसी संबंध के अनुसार सभी लोग हो सकता है अपनी सेवाएं भगवान के प्रति कर रहे हों। तो इसलिए एक तरफ से देखने में लग सकता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया या इस वैष्णव ने ऐसा कर दिया, लेकिन हो सकता है भगवान को सेवा उसी रूप में चाहिए हो। तो इस प्रकार का बेनिफिट ऑफ डाउट देकर हम लोग वैष्णवों की निंदा से या वैष्णवों के अंदर दोष देखने से बच सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सभी लोग अगर वैष्णव हैं, वैष्णव अर्थात भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और हर व्यक्ति अपने मन के हिसाब से अपने हृदय में आई भगवान के प्रति अनुभूति के अनुसार भगवान की सेवा करना चाह रहा है, यथासंभव सेवा करना चाह रहा है, ठीक है ना? जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में खड़ा हो और वो देखे, अरे इतने सारे भक्त आए मंदिर, ठीक है ना? अरे ये तो ये छोटा सा फूल लेकर आए हैं, अरे ये तो गोभी का फूल लेकर आए हैं, अरे ये धन लेकर आए हैं, अरे ये तो ये लेकर आए हैं, तो मंदिर में जो उनसे ज्यादा जरूरत चीज है वही चीज लेकर आनी चाहिए। तो वो इस प्रकार जो लोग अपनी योग्यता अनुसार जो चीज ला रहे हैं तो उनकी किस्म से निंदा कर दी। लेकिन भगवान को क्या पसंद है? भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो भाई मुझे तो आप कुछ भी दीजिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? भाव, उसमें आपका प्रेम जरूर होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। तो भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं। तो ये एक वैष्णव का बहुत ही वास्ट विजन है कि वो हर व्यक्ति के अंदर, हर वैष्णव के अंदर क्या देखे? क्वालिटी देखे। इसके अलावा वैष्णव जन तो इतने वो होते हैं कि वो खाली भक्तों के अंदर ही नहीं, जो दूसरे और भी लोग हैं जो गलतियां कर रहे हैं या जो भौतिकवादी भी है या जो दूसरे भी तमोगुण या रजोगुण से बहुत अधिक ग्रसित हैं, उनको भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं और क्या कहते हैं कि ये जो भी गलतियां कर रहे हैं या जो मेरे बारे में निंदा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये लोग तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के मिश्रण के कारण, थोड़ी सी अज्ञानता के कारण। जीवात्माएं तो प्योर ही हैं, ये तो भगवान के ही अंश हैं, लेकिन भौतिक कंडीशनिंग के कारण ये अभी ठीक ढंग से एक्ट नहीं कर पा रहा है। इसका कर्म में इस प्रकार की चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं जो कि खुद को, समाज को या हमको दूषित कर रही है या इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा कर रही हैं जो सबके लिए कष्टदायक हों। अन्यथा वो भक्त, वो जो व्यक्ति है वो आज नहीं तो कल भक्त बनेगा, है ना? एक आचार्य ने तो वैष्णव भजन में यह भी लिखा है कि जो भक्त हुए थे मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, इस पृथ्वी पर जितने भी भक्त हैं मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, जो नहीं है लेकिन अभी होंगे उनको भी प्रणाम करता हूं, और उनको भी प्रणाम करता हूं जो भविष्य में भक्त बनेंगे। तो ऐसा तो कोई भी नहीं जो भक्त नहीं होगा है कि नहीं? सारे के सारे वैष्णव होंगे तो हम लोग किसमें दोष निकाल रहे हैं? हम किस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं? हम किसको जो है ईर्ष्या द्वेष से देखें? आज हो सकता है कोई व्यक्ति भक्त ना हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हम भी भक्त नहीं थे, है ना जी? रूपा जी कहते थे कि आपके साथ में कौन व्यक्ति बैठा है उसका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है अगर आपको पता चल जाए तो यू विल बी फेंट, आप धराशायी हो जाओगे, गिर जाओगे आप, ये जानकर कि आपके साथ जो व्यक्ति बैठा है इसका ये आध्यात्मिक जगत में ये कौन है, इसकी क्या सेवा है। और जब हम लोग, क्योंकि हमारे पास वो विजन नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम तो उसको केवल बाहर की कंडीशनिंग देखते हैं, अरे ये ऐसे खाता है, ये व्यक्ति तो इसके अंदर ये बड़ी कमी है, इसके अंदर ये अवगुण है, ये तो भक्त बन ही नहीं सकता, स्वयं भगवान भी आ जाएंगे तो उसको भक्त नहीं बना सकते ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देकर या देखकर हम लोग कई बार भक्तों के प्रति अपराध कर बैठते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए जो वैष्णव जन है वो प्रत्येक जीव के प्रति क्या रहते हैं? करुणाशील रहते हैं, आदर का भाव रखते हैं सभी जीवों के प्रति। हाँ, डीलिंग्स में अलग अलग ढंग से कर सकते हैं, नहीं वैष्णवों से तो गले भी मिल सकते हैं, लेकिन अब और जो बताया जाता है कि जो भी वैष्णव पूरी तरह नहीं है लेकिन आप उससे दूसरे ढंग से डील करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैष्णव सदाचार, है ना? और पशुओं से भी दूसरे ढंग से डील करेंगे, ना कि जैसे वैष्णवों से करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए इस स्टेटमेंट का हम लोग पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें कि जब कभी भी हम लोग वैष्णवों के अंदर कोई बाहरी दृष्टि से हम अपने दोष के कारण कोई गलती देखें, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है कि हम दोष दिखता है, ये गलती उस व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति दोष कर रहा है, جو غلطی کر رہا ہے. کس کی ہے یہ غلطی؟ ہماری ہے کہ ہمیں دوش دکھائی دیتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری دوش دیکھنے کی ٹینڈنسی ہے تو ہمیں ہمیشہ دوش دکھے گا, ہر ویکتی میں دوش دکھے گا. ایک ہی ویکتی شدھ بھکت دکھے گا بس, کون؟ خود سوئم. کہ یہ غلطی میں تو نہیں کرتا, ایسی غلطی میں تو نہیں کرتا, یہ غلطی یہ کرتے ہیں, ایسی پرستھتی میں تو ایسا نہیں کرتا. لیکن جب کبھی خود کے اوپر ایسی پرستھتیاں آتی ہیں اور وہ ویکتی کہیں کرودھ یا کسی کی نندا یا کچھ کر دیتا ہے, تو پھر وہ اسی اسٹیٹمنٹ کو دوسرے ڈھنگ سے اپنے کو بچانے کے لیے اس پرستھتی کو انکول بناتا ہے یا اس کو صحیح ٹھہراتا ہے. جیسے کہ اگر کسی ویکتی نے کسی کو دیکھا رہے وہ بھگ دیکھو کتنا غصہ کرتا ہے, اوکے ٹھیک ہے دیکھ لیا, تو وہ اس کو پسند نہیں ہے تو وہ سب کے سامنے بولے کہ اس نے ایسا کرا, دیکھو اتنے سمے سے مندر میں ہے یا اتنے سمے سے ویشنو ہیں, اتنے سمے سے آ رہے ہیں مندر میں, کیا کرتے ہیں, اتنا کرودھ ہے ان کے اندر, تو اتنا غصہ وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, ہو گیا کام ختم. ٹھیک ہے جی, اور کچھ دن بعد کچھ پرستھتی اپنے ساتھ ہی گھٹ گئی, پرشاد میں اس کو رس گلا نہیں ملا اور وہ بھکتوں میں چلانے لگا کہ تمہارا بانٹنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ کیا ہوا اور کیا ہوا, اور خود کرو دکھایا. تو وہی بھکت کے ساتھ پرشاد لے کے بیٹھ جائے, اسی بھکت کے ساتھ جس کو پچھلے ہفتے لیکچر دے رہا تھا. یہ جو ہے غصہ کرنا جو ہے کیا ہے, اچھی بات نہیں ہے. تو اب وہ پھنس جائے گا, کہہ رہی یہ تو وہی ہے جس کے ساتھ میں پچھلے ہفتے بیٹھ کر اس ویکتی کی نندا کر رہا جس نے تھوڑا سا غصہ دکھایا تھا. تو کیا کرے گا وہ, تھوڑا کھانے کے بعد تھوڑا سا ریلائز کرے گا, پھر اپنے کو بچانے کے لیے اس کا حال چال پوچھے گا اور پھر بولے گا یار آپ کو پتا ہے کتنا مطلب عجیب سسٹم ہے نا, لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں, ان کو ڈانٹو نا تب تک سدھرتے نہیں, تو میں جو ڈانٹ بھی رہا تھا مجھے غصہ نہیں آیا, میں تو اس کے بھلے کے لیے ڈانٹ رہا تھا تاکہ وہ آگے سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے نا, تو اپنے کو ٹھیک ٹھہرانا ایسی پرستھتیوں میں کہ میں ٹھیک ہوں, مجھے کوئی دقت نہیں ہے, یہ پرابلم بس اس لیے ہے کیونکہ دوسروں کے اندر ہے, میرے اندر نہیں ایسی غلطی. تو جب ویکتی خود پھنستا ہے ایسے چکروں میں ایسی جگہوں پر تو اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنا کتنا مشکل ہے. تو اس لیے ویشنو کو چاہیے کہ وہ ادار بھاونا رکھے ہر ویکتی کے پرتی, جس پرکار وہ ویشنو پرارتھنا کرتے ہیں کہ جو پہلے بھکت تھے جو ہیں اور جو رہیں گے ان سب کو پرنام کرے, ان سب کے لیے ان سب سے کرپا کی یاچنا کرے, تب جا کے ہمارا ویژن سروے بھونتو سکھینا جیسی مینٹالٹی بنے گی اور سب ویشنو کے پرتی ہم آدر کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد انہوں نے کہا, یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کی پریرنا سے ایک دھناٹے ششیہ نے ورنداون میں شری شری رادھا گووند دیو جی کے لیے ایک بھوے مندر کا نرمان کیا. تو بتاتے ہیں اس سمے راجا مان سنگھ جی جو تھے وہ بھی ان کے اس سے بہت زیادہ آکرشت تھے اور ان سے دیکشا بھی گرہن کری انہوں نے راجا مان سنگھ جی نے, اور ان کے کہنے پر رادھا گووند جی کا ایک سندر بھوے مندر بھی کھڑا کیا ورنداون میں لال پتھر میں. اگر ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں, 450 ورش ویتیت ہو جانے کے بعد بھی کلاتمک ڈھنگ سے ہاتھوں دوارا لال پتھر کو اتکیرن کر نرمت یہ مندر ورنداون تتھا سمگر اتر بھارت میں آج بھی سروادھک سندر مانا جاتا ہے. رگھناتھ بھٹ گوسوامی جی نے 40 ورشوں تک نشٹھا پوروک گووند دیو جی کی سیوا بھی کی, وہ سبھی وشیوں میں ودوان تھے, یدپی انہوں نے انیہ گوسوامیوں کی بھانتی کوئی گرنتھ نہیں لکھا. رگھناتھ بھٹ گوسوامی کو کیول شاستروں کے شرون دوارا پرتیک وشے کا گیان پراپت ہو گیا, اس بھے سے کہ کہیں مسلمان رگھناتھ بھٹ گوسوامی کی پاون دیہ کو اپوتر نہ کر دیں, سجیو گوسوامی جی نے ان کی دیہ کا دہ سنسکار کر دیا. ان کے بھسماوشیشوں کو دو سمادھیوں میں پرتشٹھاپت کر دیا گیا, ایک رادھا کنڈ میں تو دوسری 64 سمادھی پیٹھ میں. رادھا گووند دیو جی کی نتیہ لیلا میں وے شری رادھا کی اشٹ منجریوں میں سے ایک راس تتھا راگ منجری کے روپ میں سیوا رکھتے. یہ راگ منجری ہیں راس رگھناتھ بھٹ گوسوامی جی. تو اس پرکار جو ہیں ہمارے گوسوامی جنوں کا جو جیون چرتر ہے ہم لوگوں کو نت پڑھنا چاہیے, ویسے بھی پریاس کرنا چاہیے. کئی ویشنو جن پریاس کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی ایک چرتر کو, کیونکہ ایک بھجن آتا ہے جس میں بولا گیا ہے کہ गौरांगेर संगीता गणे नित्य सिद्ध करिमाने से जाने ब्रजेंद्र सूत्रपाठ। अर्थात जो गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को नित्य मानता है, उन पार्षदों को नित्य मुक्त मानकर उनको गौरांग महाप्रभु का नित्य पार्षद समझकर उनकी वंदना करता है, तो वो व्यक्ति भी शरीर का त्याग करने के बाद ब्रजेंद्र नंदन अर्थात शिशी राधा कृष्ण के पास उनकी लीलाओं में प्रवेश कर सकता है। इस भजन में बहुत सुंदर ढंग से इस विषय को बताया गया है, तो हमें चाहिए कि हम लोग इन चरित्रों को पढ़ें, याद करने का प्रयास करें इन चरित्रों को, और इन्हीं को डिस्कस भी करें लोगों से, इनकी क्वालिटीज को। ठीक है, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मित्र भाव तिथि महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।